ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अग्ने जंगल की आग का यथा जिस तरह दारू लकड़ी का वियोग योग यो संयोग तथा वियोग दोनों का अदृष्टतः अदृश्य प्रारब्ध की अपेक्षा अन्य कोई अन्य कारण या संयोग ना नहीं निमित्तम कारण अस्ति है एवं इस प्रकार ही निश्चय ही जंतो जीव का अपि निसंदेह दुर्विभाव्य पाया नहीं जा सकता शरीर शरीर का संयोग स्वीकृति वियोग परित्याग हेतु कारण। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार के शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। तात्पर्य, जब किसी गांव में आग लगती है तो कभी कभी वह एक घर को फांद कर दूसरे घर को जला देती है। इसी तरह जब जंगल में आग लगती है तो वह कभी कभी एक वृक्ष से फांद कर दूसरे में लग जाती है। ऐसा क्यों होता है यह कोई नहीं जानता। यह कल्पना ही की जा सकती है कि पास के घर या वृक्ष को छोड़कर दूर के घर या वृक्ष में आग क्यों लगी, किंतु इसका असली कारण प्रारब्ध है। यही बात आत्मा के देहांतरण पर भी लागू होती है, जिसके फलस्वरूप इस जीवन का प्रधानमंत्री अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। अदृश्य प्रारब्ध के कार्य को किसी व्यावहारिक प्रयोगात्मक ज्ञान से निश्चित नहीं किया जा सकता। अतः इस तर्क से ही संतोष करना होगा कि सारे कार्य प्रारब्ध द्वारा ही संपन्न होते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही धूमधाम से हमने गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया और पिछले कुछ दिनों से गौर कथा चल रही थी। गौर कथा से पहले हम लोग भागवतम के दशम स्कंद में थे, पहला अध्याय चल रहा था, तो श्लोक संख्या 50 तक हो चुका था। आज 51 होना था, लेकिन जब आए तो पहले वाला श्लोक लिखा हुआ था, तो मैंने ये प्रारब्ध समझा कि श्लोक संख्या था 51, लिखा हुआ 49-50, तो कैसे रिएक्ट करवाएंगे। आज श्लोक ही यही है कि सब कुछ प्रारब्ध से होता है। लेकिन फिर अंतिम मंत्र यही श्लोक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। कंस उनके भाई हैं, रथ में बिठा के उनको ससुराल छोड़ने जा रहे हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि इसकी 8वीं संतान आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस अपना सारा स्नेह भूल जाता है, अपनी क्रूरता पे आ जाता है। तुरंत उसी समय अपने तलवार निकालता है, देवकी के उसको केशों से पकड़ के उसका सर काटने को तैयार हो जाता है। वसुदेव एक भद्र व्यक्ति हैं, वो पूरी परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं और फिर कंस को बहुत ही फिलॉसफी समझाते हैं, शरीर और आत्मा में क्या भेद है, मृत्यु निश्चित है, पूरा सांख्य योग विस्तार में समझाते हैं। कंस को कुछ समझ में नहीं आता, बोले कुछ प्रैक्टिकल बात करो नहीं तो मैं भी मार ही रहा हूँ। फिर वसुदेव सोचते हैं कि कंस की स्थूल बुद्धि में ये बातें जाएंगी नहीं, तो क्या करना चाहिए। तो कंस वसुदेव ने सोचा किसी ना किसी ढंग से मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी है। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर देहधारी जीव का ये कर्तव्य है कि जहाँ तक हो सके मृत्यु को टाले। मृत्यु तो सुनिश्चित है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम मृत्यु को हम टालें। तो मतलब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला, कंस को एक प्रपोजल लगते हैं सामने कि ठीक है, 8वीं संतान मारेगी ना, तो जितनी भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। आप पता नहीं क्या है, ये भविष्यवाणी कितनी सत्य है कितनी नहीं है। आठवीं संतान तक कंस जीवित रहेगा नहीं रहेगा, संतान रहेगी नहीं रहेगी, तब के तब देखेंगे। आठवीं संतान तक देवकी की आठवीं संतान, दैट मीन्स आठ वर्ष तक, नौ वर्ष तक तो देवकी जीवित रहेगी रहेगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इतना समय तो हमें मिल गया, तो कंस ने इस बुद्धि का उपयोग किया और फिर ये आगे देखेंगे, ये प्रस्ताव वो कंस के सामने रखते हैं वसुदेव। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि वसुदेव ने विचार किया कि मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्रों के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मार दे। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी ये धमकी त्याग दे, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात ही नहीं रह जाती। तो बहुत बुद्धिमत्ता से उन्होंने काम किया। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं, अपने आप को वो कन्विंस कर रहे हैं कि अग्निर यथा दारु वियोग योगियो अदृष्ट अन्यत निमित्त मस्ती। अग्नि जैसे कि जंगल में आग लगती है तो एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष के पास चली जाती है, वियोग वियोग योग, किसी को पकड़ती है किसी को छोड़ती है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक तरह तरह की काल्पनिक बातें कर सकते हैं कि विंड इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा था, इस डायरेक्शन में कम था, इससे निकल गई जंप कर गई, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। एक ही लॉजिक है, प्रारब्ध, उसका भाग्य, उसकी डेस्टिनी, अदृष्ट जो कि दिखाई नहीं देती। अदृष्ट अन्यत ना निमित्तम अस्ति, ये अदृष्ट भाग्य के अलावा इसका और कोई निमित्त और कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार से एवं ही जंतो दुरीभाव्यम शरीर संयोग वियोग हेतु, इसी प्रकार से जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, जो हमारा भाग्य होता है, उसी के अनुसार हम एक शरीर छोड़कर जीव दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस जन्म का प्रधानमंत्री हो सकता है अगले जन्म में कुत्ता बन जाए। प्रभुपाद जी का बहुत फेमस ये उदाहरण है, कई लेक्चर्स में रिपीट कर चुके हैं। वो प्रभुपाद बड़े क्लियरली इंगित भी करते हैं वो प्रधानमंत्री कौन है, बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग फलाने सब समझते होंगे, है ना। प्रभुपाद ये भी बताते हैं कहाँ पे कुत्ता बने, स्विट्जरलैंड में। तो इतना क्लैरिटी प्रभुपाद बता रहे हैं। वो बोले ये सब क्या है, अदृष्ट प्रारब्ध, जो हमारा कर्मों का फल है उसके अनुसार। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और भक्तों के समाज में कई बार ये चर्चा भी होती है, और जितनी बारी भी चर्चा कर लो ये नया ही रहता है टॉपिक। भाग्य क्या है, कर्म क्या है, स्वेच्छा क्या है, फ्री विल क्या है, मेरे जीवन में जो घट रहा है कितना भाग्य है, कितनी कृपा है, कितनी फ्री विल है। हालांकि थियोरेटिकली हम सब आंसर जानते हैं और दूसरों को समझा भी देंगे, लेकिन जब जीवन की परिस्थितियों में फंसते हैं तो सब भूल जाते हैं। इसलिए बार 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 इसकी चर्चा भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कितना मेरे जीवन में भाग्य का रोल है, कितना मेरा जीवन में फ्री विल का रोल है, मेरे आध्यात्मिक जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे व्यावसायिक जीवन में जो कुछ हो रहा है वो क्या है, मैं कितनी मेरी फ्री विल है, कितना मेरा भाग्य दुर्भाग्य है, ये समझना इतना आसान नहीं है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल इसकी ये इक्वेशन है। और ऐसे ही प्रश्न राजा सत्यव्रत के मन में उठे थे। राजा सत्यव्रत हम जानते हैं भागवतम के आठवें स्कंद में, जिनके कारण मत्स्य भगवान ने अवतार लिया। तो मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि राजा सत्यव्रत ने भगवान मत्स्य से यही प्रश्न पूछे, जब प्रलय के पानी में मत्स्य जी ने एक नाव बनाई और उसके ऊपर राजा सत्यव्रत अन्य ऋषियों के साथ बैठे थे, तो भगवान से उन्होंने यही प्रश्न पूछे कि जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मन कि मनुष्य के जीवन में प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है, जब सब कुछ भाग्य से ही निर्धारित है तो मैं प्रयास क्यों करूं, करूं तो कितना करूं। तो प्रयास क्या है, भाग्य क्या है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो हम देखते हैं किसी भी बुद्धिमान जीव के मन में जो प्रश्न उठते हैं उन सारे प्रश्नों को हमारे शास्त्रों में पहले से पूछे जा चुके हैं। हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, सभी प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है। और जितने भी तरह के प्रश्न उठ सकते हैं बुद्धिजीवी जीव के मन में, वो सारे प्रश्न पूछे जा सके। हाँ, कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि यहाँ 4G कनेक्शन नहीं आ रहा, यहाँ कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, वो हो सकता है प्रश्न ना हो और वो इतने रेलेवेंट भी नहीं है। लेकिन जो रेलेवेंट प्रश्न है मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सारे के सारे पूछे जा चुके। तो राजा सत्यवती ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। तो भगवान मत्स्य बताते हैं कि 3 मुख्य इसके फैक्टर्स हैं, एक है देव, एक है कर्म और तीसरा है काल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कर्म होता है। देव का अर्थ है भगवान की इच्छा, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल। कर्म का अर्थ है हमारे प्रयास, और फिर काल। और फिर भगवान ने उदाहरण दिया एक किसान का, कि जैसे कि किसान अपने खेत में बीज बोता है, केवल बीज बोने से क्या उसकी फसल उगेगी? केवल बीज बोने से क्या चाहिए उसको? वर्षा चाहिए। तो बीज बोना हो गया उसका प्रयास, और वर्षा क्या हो गई? देव, भगवान की कृपा। लेकिन अगर खाली वर्षा हो लेकिन बीज ना बोया जाए तो भी फसल नहीं होगी। केवल बीज बोया जाए वर्षा ना हो तब भी फसल नहीं होगी। लेकिन बीज भी बोया जाए वर्षा भी हो जाए, लेकिन क्या तुरंत फसल हो जाएगी? नहीं। क्या होगा बीच में? काल, समय। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल अपने प्रयासों पर निर्भर करते हैं, कर्मवाद, कि सारा का सारा भाग्य मेरी मुट्ठी में है, है ना। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो यही सिखाती है, क्योंकि वो भगवतहीनता है। मनुष्य पदार्थ से बना है, जीव पदार्थ से बना है, तो सब कुछ हमारे प्रयासों पर निर्भर है। तो कर्मवाद, कोई देव नहीं, कोई काल नहीं, इंस्टेंट, अभी चाहिए। साइंस क्यों नहीं करा सकती? इसलिए हम देखते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, मानो इंजेक्शंस लगा के आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला जा रहा है, आर्टिफिशियल सुगंध डाली जा रही है, आर्टिफिशियल टेस्ट डाला जा रहा है। इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। तो ना काल की परवाह है ना देव की परवाह है, केवल कर्म, है ना। ये मॉडर्न सिस्टम है। और एक है, अगर वैदिक संस्कृति की सही समझ में नहीं है तो देववाद है, कि जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, सब कुछ छोड़ो भाग्य पे, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो संतुलित दृष्टिकोण है वो भगवान बता रहे हैं, देव, कर्म और काल। और यही दृष्टिकोण भगवान गीता में हम समझाते हैं 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में, कि किसी भी कर्म के होने के 5 मुख्य फैक्टर्स हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पथक विदा, विविधांश पथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम यानी कि वो स्थान जहां कर्म किया जाता है वो है शरीर, कर्ता यानी शरीर के अंदर आत्मा, कर्णम अलग अलग हमारे इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, चेष्टा हमारे प्रयास। तो ये तो मुख्य हो गए, शरीर, आत्मा, इंद्रियां और हमारी चेष्टाएं। लेकिन अंत में क्या है? दैवम चैवात्र पंचमम, भगवान का सैंक्शन, ना उनकी इच्छा, ये 5वां है। तो भगवान कहते हैं अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अगर कोई टेररिस्ट भी अटैक करने का प्रयास कर रहा है, उसका पूरा टेररिस्ट का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में भी ये 5 फैक्टर्स हैं। और कोई आध्यात्मिक कार्य भी कर रहा है, कोई पुण्य कर्म भी कर रहा है, उसके भी सफलतापूर्वक होने के इसके पीछे 5 कारण हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं मानता तो भगवान गीता में कहते हैं ना सपश्यति स दुर्मति, जो ऐसा नहीं देखता वो बुद्धू है, वो मूर्ख है, जो समझता केवल मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरी चेष्टा ही सब कुछ है, वो दैवम चेवात्र पंचमम नहीं देखता, उसको मूर्ख बताया गया है। तो ये बात समझने की है। इसी प्रकार से पद्म पुराण में बताया गया है कि जैसे ही कोई जीवात्मा पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, उसी कंसीव करने के समय 5 चीजें फिक्स हो जाती हैं। जन्म के समय नहीं, जब जीवात्मा वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, 5 चीजें फिक्स्ड हैं। पहला क्या, कि ये जो जीव है इसके जीवन में कितना धन इकट्ठा करेगा, बहुत धन कमाएगा नहीं कमाएगा सारा फिक्स है ना। उस धन के साथ सुख आएगा या दुख आएगा, जरूरी नहीं है कि धन आएगा तो सुख आएगा, धन के साथ दुख भी आ सकता है या सुख भी आ सकता है, पूरा फिक्स है ना। दूसरा मृत्यु, कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, कब मरेंगे, सारा फिक्स है। क्या मृत्यु का कारण होगा, सब फिक्स है। हो सकता है ज्यादा धन की प्राप्ति ही मृत्यु का कारण बन जाए। जैसे कि एक बार एक चुटकुला था कि एक व्यक्ति था मुंबई में, रिक्शा चलाता था, गांव से आया था, बहुत गरीब था, लेकिन एक उम्मीद थी कभी ना कभी मेरी लॉटरी तो निकलेगी। तो बड़ी श्रद्धा से रोज लॉटरी खरीदता था, रोज खरीदता था, खरीदता गया, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, पोते हो गए, मुंबई की एक चाल के छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता था बहुत दरिद्रता में, लेकिन श्रद्धा से रोज लॉटरी की टिकट खरीदना। उम्र निकलती गई, 75-80 साल का हो गया, हृदय का रोगी हो गया, लेकिन ये छोड़ा नहीं, कभी ना कभी तो लॉटरी निकलेगी। और अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी, खुद जाके लॉटरी जाके चेक करे, बेटे जाते थे चेक करके आते थे, कुछ नहीं है पिताजी, क्यों नहीं बेटा, करना है, जब तक जीवित हूं लॉटरी खरीदता रहूंगा। तो एक दिन ऐसे ही बेटा गया चेक करने, तो किया, एक एक डिजिट सारा 14-15 डिजिट का नंबर था, पूरा का पूरा मिल गया। उछल पड़ा बेटा, 70 लाख की लॉटरी, वो तो एकदम उछल गया। बोले जाके बताता हूँ पिताजी को। बेटे ने बुद्धि का उपयोग किया, पिताजी हृदय रोगी हैं, इतनी बड़ी खबर सुनेंगे शायद वहीं ना खत्म हो जाए। तो पहले हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, जिनका डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर था, उसको बताया लॉटरी निकल गई 70 लाख की। मतलब बहुत अच्छा किया आप यहाँ आ गए, पहले ही बता देते तो हो सकता आपके पिताजी चले जाते, तो इसको बड़े आराम से तरीके से बताएंगे। तो डॉक्टर जाता है घर में, बोले मिलिंद बाबू आपको एक खबर देनी है। बोले बताओ। बड़े ध्यान से सुनना। बोला अगर आपकी 10 लाख की लॉटरी निकल आए तो क्या करोगे। सबसे पहले गाड़ी खरीदूंगा 10 लाख की। अच्छा चलो, ये तो 10 लाख तो चला गया। बोलो अगर 20 लाख हो गए तो क्या करोगे। 20 लाख हो गए तो दूसरे बेटे के लिए भी गाड़ी खरीद लूंगा। वेरी गुड मिलिंद बाबू। अगर आपकी 40 लाख की लॉटरी आ गई तो क्या करोगे। बोले अब एक अच्छा सा फ्लैट और लिख लूंगा, क्या कर सकता हूँ और। बोले वेरी गुड मिलिंद बाबू, 60 लाख की लॉटरी निकल गई तो और क्या करोगे। बोले गांव से आया हूँ, गांव में भी कुछ खरीद लूंगा। बोले सब कुछ हो गया। बोले अगर मिलिंद जी 70 लाख की लॉटरी निकल गई तो क्या करोगे। उसने बोला दोनों बेटों को गाड़ी मिल गई, बॉम्बे में फ्लैट हो गया, गांव में हो गई, और क्या करूँगा, क्या चाहिए। बोले 10 लाख आपके लिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने ये सुना, डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया। डॉक्टर भाई तो कई बारी हो सकते हैं मृत्यु का कारण ये बन जाए। डॉक्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, मेरा हार्ट जो मेरा पेशेंट है। तो मृत्यु कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, ये नहीं पता, लेकिन ये फिक्स्ड है। तीसरा है इसकी प्रवृत्ति। ये ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य स्वभाव ज्यादा है इसके अंदर या शूद्र का स्वभाव है। चौथा, कहाँ तक एक शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, एजुकेशन। और पांचवा, इसकी जीविका, किस प्रकार से जीविका कमाएगा। तो कौन कौन सी चीजें फिक्स हैं। पहला धन कितना आएगा, दूसरा मृत्यु, तीसरा इसकी प्रवृत्ति, चौथा शिक्षा, और पांचवा जीविका। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसको बदल नहीं सकते, ये हमारा भाग्य है ना। और ये भाग्य क्या है, बोले फिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, तो बद गए हम। ये जो भाग्य है, वास्तव में भाग्य होता क्या है। भाग्य होता है जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अविशा कर्म सर्व प्रकृति जारगुणा। कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से, हर क्षण हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, और हर क्षण हम कर्म के कुछ बीज बोते हैं, और ये बीज का फल हमें तुरंत भी मिल सकता है और कई जन्मों बाद भी मिल सकता है। किस प्रकार के हमारे विचार आ रहे हैं, किस प्रकार की इच्छाएं हो रही हैं, क्या चीज हम देख रहे हैं, क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है, हो सकता है कई जन्मों के बाद वो इच्छा पूरी हो, और इस प्रकार से हम कर्मों के बीज बोते जाते हैं और इन सब को बोलते हैं संचित कर्म, एक्यूमुलेटेड कर्म। इन संचित कर्मों में से जिन कर्मों का प्रतिक्रिया रिएक्शन हमें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है उसको भाग्य कहते हैं, उसको फेट डेस्टिनी कहते हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो ज्यादातर दुख के कारण होते हैं वो हमारे निकट संबंधी होते हैं, हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारे पति, हमारी पत्नी, सास ससुर, जो हमारे बहुत नज़दीकी होते हैं, जो हमारे सगे बहुत खास मित्र होते हैं, वही हमारे जीवन में दुख के कारण होते हैं। हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे कर्म हैं वो आ रहे हैं, आएंगे ही हमारे ऊपर, वो माध्यम बन जाते हैं हमें कर्म देने के लिए, है ना। तो क्या है वो? हमारा भाग्य है, वो रिएक्शन है, वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना। उसको दोषारोप करने से, गालियां देने से, शोक मनाने से, फ्रस्ट्रेट होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो हमारे ही कर्म हमारे ऊपर आ रहे हैं वापस। ये बात समझनी है, लेकिन समझ में आती नहीं, लेकिन ये बात समझनी है। ये सिद्धांत बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए ये जो है, लेकिन फिर सब कुछ अगर फिक्स्ड है तो फिर क्या खुला, क्या हम कर क्या सकते हैं? तो जो फिक्स नहीं है वो है कि ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, इन परिस्थितियों में हमारा क्या रिएक्शन है, वो फिक्स नहीं है। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, एक ही परिस्थिति होगी उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो फिक्स नहीं है। लेकिन परिस्थितियां आएंगी ये फिक्स्ड है, ये तो जन्म के साथ ही फिक्स हो गया था, इसको हम बदल नहीं सकते। तो क्या अपने भाग्य को, डेस्टिनी को हम बदल सकते हैं? एक तरीके से नहीं, क्योंकि जो रिएक्शन है वो तो आएगा ही आएगा। एक बार एक कर्म हो गया उसका रिएक्शन तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना। अभी हमारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है ना, ये आपको मालूम है। ये कंडीशन आपको जन्म से जैसे ही माँ के गर्भ में प्रवेश किया था फिक्स हो गया था। आप जितने मर्जी च्यवनप्राश खा लो, जितने मर्जी व्यायाम कर लो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसा ही रहेगा। तो एक बार ये बात समझ में आ जाए किसी को, फिर वो बुद्धिमत्ता से देख ले भैया क्या चीज़ें मैं खा सकता हूँ क्या नहीं खा सकता हूँ। बच्चों से नहीं बोले मैं क्यों नहीं खा सकता, सब खा सकते, मैं क्यों नहीं खाऊंगा, साथ में ये दवाई खा लूंगा वो खा, कर लो प्रयास कर लो, तो क्या होगा, रिएक्शन आपको ही मिलेगा। तो मेरा रिस्पॉन्स मेरे हाथों में है, उस पेट को मैं ठीक जितना कर सकता हूँ वहीं तक ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जो भाग्य जो है हमें मिल रहा है उस परिस्थिति में हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं ये हमारे हाथ में है ना। परम पूजनीय भक्ति परम पूज्य भानु स्वामी महाराज एक कथा सुनाते हैं कि दो भाई थे, जुड़वा भाई, गरीब परिवार से, लेकिन बड़े होकर क्या बने, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया और एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति बन गया, समाज का समाज सुधारक। दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी, परिस्थितियां एक जैसी, एक क्या बन गया, एक क्या बन गया। जो अपराधी भाई था वो जेल में चला गया, तो एक प्रेस रिपोर्टर ने सोचा बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, पूरी हिंदी फिल्म की स्टोरी है, तो उसने जाकर इंटरव्यू लिया जो अपराधी भाई था, उससे पूछा क्यों आप ऐसे बने, तो बोले आप नहीं जानते मेरा बचपन कैसे बीता था, बहुत ही दरिद्रता मैंने देखी, अभिशाप था, पिताजी दारू पीते थे, माँ को मारते थे, घर का वातावरण बहुत खराब था, उसी समय मैंने ठान लिया था कि मैं कभी गरीब नहीं रहूँगा, कुछ भी कर लूँ पैसे जरूर कमाऊँगा, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इसलिए मैंने जैसे भी है कुछ भी किया, लेकिन पैसा कमाया, क्या हो गया अपराध कर लिया था, है ना। दूसरे भाई के पास के जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बोले आपके क्या क्यों आप ऐसे बने, बोले बचपन में मैंने बहुत दुख देखे, देखा कैसे माँ को कष्ट दे रहे मेरे पिताजी, कितनी दरिद्रता है, तभी मैंने ठान लिया ये दुख मुझे प्राप्त हुए, किसी और को मैं दुख प्राप्त होने नहीं दूंगा, मैं अपना जीवन लगा दूंगा किसी और के जीवन में ऐसा दुख नहीं आने दूंगा। एक ही परिस्थिति है और रिस्पॉन्स कैसा है, बिल्कुल अलग अलग है, है ना, देख सकते हो। इसी प्रकार से आप कोई कहे कि ठीक है जी, आपको ये जो डेस्टिनी है ये तो कर्मों का फल है ही है, मिलना ही मिलना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को दुख देते जाते फिरें, आते जाते किसी को थप्पड़ मार दें, है ना, किसी को बिजनेस में धोखा दे दें, बोले क्यों? बोले ये तो तेरा भाग्य फल है, जो लेना ले तू, है ना, सीखो भैया, भाग्य फल मिल रहा है और क्या कर सकता हूँ मैं। नहीं, ये जो भाग्य फल है, ये जो प्रारब्ध है, ये इनवर्ड्स है, मेरे लिए जो आ रहा है, जो मुझे प्राप्त हो रहा है, ये नहीं कि मैं जो दे रहा हूं। क्योंकि किसको मिलेगा, किसके माध्यम से, ये हायर अथॉरिटी डिसाइड करती है। ये पूरा यमराज जी का पूरा सेक्शन है उनके पास, यमराज जी का डिपार्टमेंट है। यमराज जी देखते हैं किस व्यक्ति ने किस चेतना से किस अभिप्राय के साथ क्या कर्म किया, इसके क्या क्या प्रमाण हैं, कौन कौन इसके साक्षी हैं, उसके अनुसार वो किसी को किसी का माध्यम बनाते हैं, किसी को किसी का बेटा बना देंगे, किसी की बहू बना देंगे, उसके माध्यम से उसको कर्मफल मिलेगा। हम कर्मफल बांटेंगे, अंदर अथॉराइज एजेंट नहीं बन सकते, हम पुलिस नहीं है, तो पुलिस का जो कार्य है पुलिस को करने देंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ के कमरे में बंद नहीं कर सकते, हमारे को सजा मिल जाएगी, अनऑथराइज कार्य क्यों किया। तो हम माध्यम नहीं है किसी के कर्मफल को बांटने के लिए। हाँ, जो हमें कर्मफल प्राप्त हो रहा है उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये देखना है। बहुत से एग्जाम्पल आपने अपने जीवन में भी देखे होंगे, जैसे शुरू शुरू में हम कॉलेज से पास आउट हुए तो बड़ा फितूर था, चलो आईएएस की तैयारी करते हैं। तो तैयारी शुरू की तो हमारे दोस्त एक व्यक्ति से हमें मिलाने ले गए, जो पूरा गढ़ होता था आईएएस की तैयारियों का, हौस खास के पास, वहाँ एक व्यक्ति थे, भैया भैया बोलते थे उनके, उनकी उम्र हो गई थी 32 साल। बोले 5 बार ही आईएएस एग्जाम दे चुके हैं, प्रीलिम्स मेंस सब क्लियर, हमेशा इंटरव्यू में फेल हुए। ब्रिलियंट व्यक्ति, प्रीलिम्स क्लियर कर चुका है, मेंस क्लियर कर चुका है, कोई आसान थोड़ी है पहले अटेम्प्ट से लेकर, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते थे। फिर उन्होंने सोच लिया मेरे भाग्य में नहीं है, फिर उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल दिया। अब इनके पढ़ाए हुए लड़के आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। होता है ऐसे, है ना, इसलिए होता है। तो जो है भाग्य में सो है सो है। तो इसी ढंग से अब किसी के जीवन में बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हम देखते हैं भक्तों के जीवन में भी हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब हमारे ऊपर इसको कैसे लेना है, कोई व्यक्ति टूट जाए बिल्कुल, खत्म हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को ग्लानी में चले जाते हैं, कहीं दूसरे को ब्लेम करते हैं, और कहीं क्या करेंगे, सीधा भगवान की शरण लेंगे, हमारे ऊपर रिस्पॉन्स है ना। मैं एक लेक्चर सुना था फन पूजनीय भक्ति रसामी स्वामी महाराज का, वो बता रहे थे कि वो एक बिजनेसमैन को जानते थे, अच्छे भक्त थे, जयपुर में रहते थे, वो प्रतिदिन जाते थे गोविंद देव जी की मंगल आरती अटेंड करने। तो एक बार जा रहे थे तो तभी देखा उनका एक एम्प्लॉई फैक्ट्री के मालिक थे, भागा भागा आया, बोला गोडाउन में आग लग गई है। तो फटाफट उनकी गाड़ी में बैठ के गए गोडाउन में देखने लगे, तो जब तक वो पहुंचे तो पूरा गोडाउन आग की लपटों में घिरा हुआ, पूरी आग ही आग। तो कुछ देर तक खड़े रहे, सारे के सारे आगे थी, फायर वैन्स आगे थी, पानी डाल रहे थे, प्रयास कर रहे थे, कुछ देर तक खड़े रहे, फिर चलना शुरू कर दिया। तो उनके एम्प्लॉयज ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहते जा रहा हूँ मंगल आरती का टाइम है, मंगल आरती तो अटेंड कर ही लूँ। बोले यहाँ आग लग रही है, आप मंगल आरती अटेंड करेंगे? बोले मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब जो था खत्म हो गया, भगवान की इच्छा थी जल गया तो जल गया, तो मंगल आरती क्यों मिस कर, वापिस आके देखता हूँ जो करना है करूँगा, और क्या, अब जो मैं कुछ, मैं अंदर जाके थोड़ी कूदूंगा, जो फायर इंजन वाले कर रहे हैं कर रहे हैं, ये तो क्या खत्म होना था जो हो गया, आधे घंटे की बात है, आधे घंटे में वापस आ जाता हूँ, जो करना है ठीक है ठीक है, ये सच्चाई की बात है। तो इस समझ में ये बात आ जाएगी तो रिस्पॉन्ड करना इतना मुश्किल नहीं है। ये बात समझ में नहीं आएगी तो हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, और ऐसा करने से क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नए कर्म बना रहे हैं, नए कर्म बना रहे हैं, नए कर्म बना रहे हैं, उसका और रिएक्शन मिलेगा, उसका और रिएक्शन मिलेगा, और जन्म हो जाएंगे। इसलिए पूरी की पूरी जो वैदिक संस्कृति है वो हमें यही शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए है कि हर परिस्थिति में अपनी सही मनस्थिति कैसे बनाए रखें। पूरा पूरा हमारा साधना, हमारी भक्ति, जो भी हम पढ़ते हैं, मुख्य उद्देश्य यही है कि हर अलग अलग परिस्थिति में, संसार में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे हर एक जीवन में, तो हर अलग अलग परिस्थिति में अपनी सही मनस्थिति कैसे बना के रखें, ताकि ये जो हमारा रिएक्शन है वो सही रहे। लेकिन जो आधुनिक शिक्षा है वो क्या बताती है कि मनस्थिति तो पता नहीं, जो होगी सो होगी, परिस्थिति को बदलो। है ना, खूब धन कमाओ, पैशनेट हो जाओ, जान लगा दो अपनी, दूसरे का गला काट दो, आगे बढ़ो, परिस्थिति चेंज करो, कैसे नहीं कर सकते, सब कुछ आपके हाथ में है ना, वो परिस्थिति बदलने में सब लगे हुए हैं वो, इसलिए क्या कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है ये, और कर्म जनरेट किए जा रहे हैं, परिस्थिति तो बदलेगी नहीं, वो तो वैसे की वैसे ही है। भक्ति सिद्धांत सविता को हमारा उदाहरण देते हैं, कैसे वैज्ञानिक है जो चाहते हैं रात के समय अभी हम सूर्य देखेंगे, क्यों नहीं देख सकते सूर्य, क्या करते हैं सब, बड़ी बड़ी टॉर्च लाइट लेके आ जाते हैं, लगे रहेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कहाँ है सूर्य, अभी मैं प्रकट करवाऊंगा सूर्य को, सूर्य को देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, क्या हुआ, धीरे धीरे रात का अंधकार चला गया और 5:30 बजे अपने आप सूर्य उदय हो गया, और ये मूर्ख वैज्ञानिक क्या करे, आ देखा, देख लिया हमारी टॉर्च से हमने सूर्य को देख, यही हम सबकी परिस्थिति है आज के युग में, खूब प्रयास करते हैं करते हैं करते हैं, और जो देवम चैवात्र पंचमम जो मिलना था वो मिल गया, फिर देखते यस आई डिड इट है ना, मेरे प्रयास से सब हो गया, और फिर उसी में हम उसी के मद में हम मदमस्त रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है ये, बहुत ही, तो भक्तों को ये समझना चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। आप कोई पूछ सकता है कि अलग अलग जीव अलग अलग रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं, हम सब एक ही बात को सुनते हैं, एक ही परिस्थिति होती है, अभी ऊपर जाएंगे प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद करते करते किसी के प्लेट में 2 रसगुल्ले और किसी के प्लेट में 1 रसगुल्ला भी नहीं, तो कैसा लगेगा ना, इसको मानेंगे नहीं, ये तो प्रारब्ध की बात है बोले पिछली बार भी इसने ऐसे ही किया था, ये जब भी प्रसाद बांटता है ऐसे ही बांटता है, मुझको देख कर ऐसा करते हैं ना, हम इसको रिएक्ट करेंगे, छोटी छोटी हम अपने आप को नोट कर सकते हैं। आध्यात्मिकता अनुकूल करने का लाभ क्या होता है कि हम खुद ही अपने व्यवहार को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हो सकता है हम उसको नियंत्रित ना भी कर पाए, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करना भी शुरू कर देंगे ये पहला स्टेप है, क्या यार कैसा रिएक्ट किया मैंने, ओहो हो गलत बात है, ये तो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, मैं बोलता क्या हूं सुनता क्या हूं और व्यवहार कैसे करता हूं, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, बस वो शुरू हो जाएगा, तो एटलीस्ट हम अपने आप को परखना तो शुरू करें, ऑब्जर्व तो करना शुरू करें। तो अलग अलग हम रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं, तो क्या जीव स्वतंत्र है कि नहीं, क्या कहना आपका, है भी और नहीं भी है, मतलब है, एक एक करके हो जाएगा, यस भाई, अच्छा बद जीव, हाँ जी केवल कृष्ण स्वतंत्र है, डिजायर के लिए स्वतंत्र है, और माता जी से क्या बोलती है, तो बहुत आंशिक रूप से हम स्वतंत्र, क्या एग्जाम्पल देते हैं श्रीमद् भागवतम में कितने स्वतंत्र हैं हम, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है हाँ यमराज जी बताते हैं कि जैसे जो बैल है, बैल की नाक से रस्सी निकाली गई और रस्सी कितनी स्वतंत्रता उसके पास, जितनी रस्सी की लंबाई है बस, तो हर जीव अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, इसका मतलब हर एक की रस्सी की लंबाई अलग अलग है, ठीक है ना, हर एक की रस्सी की लंबाई अलग अलग है, यानी कि रस्सी की लंबाई क्या हुआ, किसके ऊपर कितना रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, जिसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बहुत कम कर पाएगा। हम देखते हैं अक्सर लोग जो बिल्कुल नशेड़ी हो जाते हैं, हाँ न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लेते हैं, दारू बंद कर दूंगा आप, है ना, 31 दिसंबर को खूब पी रहे होंगे, कल से दारू नहीं पीऊंगा, अगले दिन फिर पी रहा होगा, बोले छोड़ी नहीं जाती, क्यों, वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी जो स्वतंत्रता है वो पूरा तमोगुण से ढक गई है। और हम नीचे के योनियों में भी देख सकते हैं, पेड़ पौधे हैं और पशु हैं, जो अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण रूप से वो तमोगुण में है। तो जितना ज्यादा तमोगुण की गहराई होगी, उतना हम कम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर पाएंगे। तमोगुण से ऊपर रजोगुण, थोड़ा रजोगुण होगा तो हम अपने को एक्सप्रेस कर पाएंगे, लेकिन सतोगुण जिसमें ज्यादा होगा वो अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग कर पाएगा, जान पाएगा क्या ठीक है क्या गलत है, तो उसकी रस्सी की लंबाई उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसलिए ये मनुष्य योनि में ही केवल यह स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है, और इस मनुष्य योनि में हम सही निर्णय ले सकते हैं। मनुष्य योनि को जंक्शन बताया गया है, अगर हमने सही रिस्पॉन्ड किया तो हम भगवद्धाम वापस जा सकते हैं, और सही रिस्पॉन्ड नहीं किया तो दोबारा से निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। तो भागवतम में क्या परिकाष्ठा बताई गई है सही रिस्पॉन्ड करने की, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ वो तो बताया गया कि प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन सही रिस्पॉन्ड करने की परिकाष्ठा उसका परिणाम बताया गया है, तत्ते अनुकंपा। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमेक्षमाणो बुंजन व्यात्मा कृतम विपाकम हिदवाक मनोपे विदधान नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदा से दयाभाग तत्यानुकंपा सुसुमिक्षमाणो वंजन एवात कृतम विपाकम। अपने ही किए हुए पाप कर्मों का व्यक्ति परिणाम भोगता है करुणा की प्रतीक्षा करते हुए, हिदवाक मनोभी विद्धा नमस्ते, अपने शरीर से अपने मन से अपनी वाणी से भगवान को प्रणाम करते हुए उनकी सेवा करते हुए, यानी कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को ये समझते हो कि ये तो मेरे कर्मों का फल है, भगवान की कृपा से कर्म फल कम हो गए हैं, और इस परिस्थिति में भी शरीर मन और वाणी से वो सेवा करता रहे, इस परिस्थिति में भी वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो क्या बन जाएगा, वो मुक्ति पदा से अध्यापक, ऐसे करते हुए वो भक्ति में जीवित रहा तो क्या हो जाएगा, वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाएगा, उसको भगवान का धाम विरासत में प्राप्त हो जाएगा। कि आपको तो मिलना ही है, आपको कैसे नहीं मिलेगा। तो ये परिकाष्ठा है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ये इतना आसान नहीं है, और इसी की हमें इसका प्रयास करना है। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की गहराई में जाते हैं, तो हम देखेंगे ये हर परिस्थिति में हमारी ऐसी मनस्थिति रहेगी, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। हम जो सुनते हैं, सुनने के बाद जब तक उस पर मनन नहीं करेंगे तो वो हमारे व्यवहार में नहीं आएगी, ये बहुत आवश्यक है। सालों साल बीत जाते हैं, हम सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, लेकिन भक्तों का संग तभी प्रभावशाली होगा जब भक्तों के संग में जो हम सुनते हैं उस पर मनन जरूर करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तब उसको बोलते हैं असली संग। भगवान ने भी गीता में यही कहा कि विमृश्य शेषण यथाचित तथा करो, पूरी चॉइस दी अर्जुन को, फ्री विल दिया कि जो इच्छा है वो करो, जो मैंने सुनाया है उस पर मनन करो, फिर जो इच्छा आती है करो। तो इसलिए जो हम पढ़ के और सुन के जाते हैं उसका प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र में पड़ना चाहिए, लगना चाहिए कि प्रभु जी फैक्ट्री के मालिक हैं, इनकी कुछ बात अलग ही है, इनका काम करने का तरीका कुछ अलग ही है ना, ये प्रोफेशनल है, इनके काम करने का तरीका कुछ अलग है। क्यों, हम सुबह माला करके जाते हैं, सुबह सुन के पढ़ के जाते हैं और फिर उसको अपने कार्यक्षेत्र में उतारते हैं, क्योंकि सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है सतोगुण में अगर हमने अपनी चेतना को फाइन ट्यून कर लिया और फिर पूरा दिन हमने उस चेतना में काम किया तो हम रिएक्शन से बच जाएंगे, हमारे सारे कर्म अकर्म होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो अक्सर होता क्या है कि सुबह हम नहीं उठे, सही ढंग से मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं किया, कुछ सुना कुछ पे मना नहीं किया, फिर हम जब जाते हैं रजोगुण और तमोगुण इतना प्रभावशाली होता है कि हम भी उन्हीं के प्रभाव में काम करते हैं और फिर हम रिएक्शन होंगे, तो टाइम तो निकलता जाएगा, टाइम वेट नहीं करेगा किसी के, और फिर हम रिएक्शन करते जाएंगे। तो इसलिए इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है कि भाग्य क्या है, प्रारब्ध क्या है, हमारी फ्री विल क्या है, और इस फ्री विल को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। जितना हम सत्वगुण बढ़ाएंगे और जितना हम विशुद्ध सत्व में आने का प्रयास करेंगे, भगवान हमें और स्वतंत्रता देते जाएंगे और उसका हम सही उपयोग करते जाएंगे। और भगवान ये सारा भगवान के निर्देशन में ये सब कुछ होता है। और इस भाग्य की आड़ में हम कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकतें ना करें। जब दुर्योधन तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा था पांडवों को मारने के, तो विदुर ने धृतराष्ट्र को परामर्श दिया कि दुर्योधन को रोको, अन्यथा पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र कहता है क्या किया जा सकता है, ये तो भाग्य की बात है, अगर कुरु वंश ने नष्ट होना ही है तो भाग्य में ऐसा लिखा है, मेरे जैसा तुच्छ जीव इस भाग्य को कैसे बदल सकता है। विदुर ने इतना डांटा धृतराष्ट्र को कि जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने वाला था तब तुमने भाग्य की बात नहीं की और अब भाग्य की बात कर रहे हो, अपने गैर जिम्मेवारी को भाग्य का नाम मत दो। तो ऐसा ना हो कि हम भी कई बार क्या होते हैं, हम जब भक्ति शुरू करते हैं तो हमें एक गलत फहमी हो जाती है कि हम ट्रांसडेंटल हैं और हमें कुछ संसारिक कार्य को सही ढंग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति की आड़ में हम कई बार आलस हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और आलसी होकर अपने आश्रम का हम सही धर्म का पालन नहीं करते। इस संसार में कोई भी चीज फ्री नहीं है, हर चीज का रिएक्शन है। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में हम धन कमाते हैं, नहीं, धन कमाने के बाद ईमानदारी से धन नहीं कमा रहे हैं और ईमानदारी से भगवान और भक्तों की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, अतिथि सत्कार में नहीं लगा रहे हैं, तो हमें कोई कर्म फल से नहीं बचा सकता। हम ये नहीं कहेंगे क्या हम तो भक्त हैं क्या हुआ, नहीं, वो धर्म का पालन, गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करना ही है। इसी प्रकार से कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम गुरु की सेवा के लिए है, अपनी सेवा के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, लेकिन अपने आराम को ज्यादा महत्व देके गुरु की सेवा को नेग्लेक्ट करे, हालांकि सब कुछ फ्री में मिल रहा है लेकिन कुछ भी फ्री नहीं है, उसका रिएक्शन मिलेगा। तो इसलिए कई बारी हम भक्ति की आड़ में अपने प्रारब्ध कर्मों को ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए उसको अदृष्ट बोला गया, लेकिन वो कार्य करता है। तो हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, हालांकि वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो कार्य कर रहा है, और इसकी गति बहुत ही गहन है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और जो हमारा धर्म है उसका हम सही ढंग से पालन करें और साथ ही साथ अपनी भक्ति की गहराई को बढ़ाएं, ताकि हर परिस्थिति में जो हमारा रिस्पॉन्स हो वो उचित हो, जिससे कि हम लोग नए कर्म को उत्पन्न ना करें और इसी जन्म में इस कर्मों के फलों से निपटारा पाके भगवत धाम वापस जा सके। जितना ज्यादा हम देहात्म चेतना में रहेंगे उतना ज्यादा हमारा भाग्य अंधकार में है, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि कई बार हम जाते हैं, आप भी जाते होंगे, देखते होंगे, हम ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, लोग देखते हैं हमने भेगो वस्त्र धारण किए हुए हैं, बोले पंडित जी आपको हाथ देखना आता होगा, देखो हाथ है ना, तो कई भक्त लोग मजाक में हाथ देख भी लेते हैं और बोलते हैं कुछ चीजें हैं जो हर पे लागू होती है। क्या है, आप बड़े आसानी से किसी को बोल सकते हैं, देखो आप तो लोगों को बहुत प्रेम करते हो लेकिन आपको उतना प्रेम मिलता नहीं है, ये बात एकदम हृदय को छू जाती है। हर व्यक्ति यही सोचता है मैं इतना कुछ करता हूं मुझे प्रेम मिला नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर दूसरा, पैसा आएगा टिकता नहीं है, टिकता नहीं है बिल्कुल, लेकिन काम रुकता भी नहीं है ना, नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनानाम एको भवनाम विदधाति कामन, भगवान काम रोकते भी नहीं है किसी का, ये बिल्कुल सही बात है, आता है टिकता नहीं है, काम रुकता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद तो सब कुछ निश्चित है, बीमारी आएगी आएगी, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, मृत्यु आएगी आएगी, क्या ब्राइट फ्यूचर है, अंधकार ही अंधकार है। तो अगर हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं सब अंधकार में है, इसलिए हमेशा अपने आपको याद रखना कि मेरी असली पहचान क्या है, कि मैं भगवान का अंश हूं। तो हमारी डेस्टिनी, हमारा जो भविष्य है वो भविष्य बहुत उज्जवल है। इसलिए अर्जुन बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ था, तो सबसे पहला ज्ञान भगवान ने अर्जुन को यही दिया, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, दैनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम् यौवनम् जरा, तथा देहांतर प्राप्ति रह धीरस्तत्र न मोहयति। तो लेकिन एक शरीर के इस संसार के सुख दुख आएंगे तो क्या करूं, तो अर्जुन को बताया भगवान ने क्या अगला श्लोक, मात्र स्पर्शास्तु को अंत शीतोष्ण सुख दुख था आगाम पाय न नित्य तांस्तिक्षस्व भारत, कि संसार के सुख दुख है इसको केवल क्या कर लो, सहन कर लो। अब सहन करने की शक्ति सबकी अलग अलग है, निर्भर करता है किसके अंदर कितना सतोगुण है। तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति के लिए सहन करना उसकी लिमिट बहुत कम है, वो तुरंत फूट पड़ेगा, कोई बात नहीं जहां तक सहन कर सकते हैं करें, लेकिन जब सतोगुण बढ़ेगा तो हम सहन भी करना सीख जाएंगे। और फिर अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, वो क्या है, यमिना विथंती ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखा धीरा स अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय इमोर्टैलिटी, भगवत धाम जाने की योग्यता क्या है, कि जो इन संसारिक सुख दुख से विचलित नहीं होगा और संभाव रहेगा, ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने की। तो ये हमें विकसित करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल जाए इसको, बहुत बिजनेस में लाभ हो जाए तो हमारी ईगो फूल जाती है, बोले हाँ देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मुझे मिला है, ये तो मूर्ख है ये कुछ पैसा नहीं कमा पा रहा, नहीं ये सब प्रारब्ध है। इसलिए जो कुछ मिला भगवान की सेवा में, कुछ नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं, मुझे भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। भक्ति प्रारब्ध पे निर्भर नहीं है, भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भक्ति जीवन की हर परिस्थिति में हो सकती है ना, ये नहीं कि परिस्थिति ऐसी है इसलिए मैं भक्ति करूंगा, भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और जितना हम अपने जीवन में भक्ति को अनुकूल करेंगे, जितना हम ये अनुकूल करेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उतना मेरा जो रिस्पॉन्स है वो उन्नत होता जाएगा। और जितना हम शारीरिक चेतना में रहेंगे उतना मैं अपने परिवार के बारे में सोचता रहूंगा, उतना मेरा जो रिस्पॉन्स है बहुत ही संकीर्ण रहेगा और फिर से मैं नए कर्मों को उत्पन्न करूंगा, है ना। तो ये कुछ बातें थी, ये टॉपिक बहुत ही जटिल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें और मनन भी कर सकते हैं और अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न या
जी, इच्छा करना भी कोई कर्म में आता है क्या? अगर कर्म है तो इसका फल क्या होता है?
इच्छा करना भी कोई कर्म है? हाँ, जैसे मन से वाणी से शरीर से तो इच्छा किया, जैसे तो ऐसे तो कलयुग में बोला गया कि मन के द्वारा किए कर्मों का फल नहीं मिलता ना? लेकिन अगर मन के अंदर वो इच्छा है और बार बार उस पर मनन कर रहे हैं तो वो वाणी में परिणित हो जाएगा और वाणी से शरीर में परिणित हो जाएगा, तो इसके लिए भी सावधान रहना चाहिए।
कभी भी एक बार किया फिर उसके बाद दोबारा उसको नहीं किया तो क्या वो बाद में कर्म में
नहीं, उसमें परिणित नहीं किया तो ठीक है, तो इच्छा पे उसमें काम नहीं किया तो धीरे धीरे इच्छा वो समाप्त हो जाएगी, फिर वो खत्म हो जाएगी।
क्या क्या कारण है कि वो तमस गुण में है, लहसुन और प्याज को नहीं खाया जाता?
इसका प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, जो आज के लेक्चर से रेलेवेंट है वो पूछे जा अच्छा रहेगा। हाँ जी,
आपने पूछा जी, दो प्रश्न, एक टेक्निकल सर, जो आपने बताया कि फाइव थिंग्स जो कंसेप्शन के समय फिक्स होती है, ये किस जगह से आप?
पद्म पुराण से।
पद्म पुराण से। और इसमें जैसे पहला आपने बताया कि कितने मनी अर्न करेगा और लास्ट चीज एक जीविका होगी, दोनों में डिफरेंस क्या? जीविका रेफर्स टू ऑक्यूपेशन या किसी?
जीविका हाँ, मतलब किस तरीके से कमाएगा।
अच्छा, मतलब इस ऑक्यूपेशन। ठीक
है।
रूप जी, जैसे इसमें आपने बताया कि किसी व्यक्ति को हमें जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिला है हम उसके प्रकार से एक्ट करना चाहिए, पर हम नहीं कर पाते या कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, डिपेंड करता किस वो किस मोड्स में सिचुएटेड है, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि स्पिरिचुअल नॉलेज को अप्लाई करने में या मोड्स को चेंज करने में या दोनों पे पैरेलली?
रोजी का प्रश्न है कि हमारा फोकस सतोगुण में आने का होना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करने के लिए। निश्चित रूप से जब आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करेंगे तो अपने हम सतोगुण में आएंगे, लेकिन हमें अपनी आदतों को छोड़ रही आदतों को बदलने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करने में सहायता मिलेगी। छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सतोगुण में लाएंगे, उससे हम स्पिरिचुअल नॉलेज को अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे और उसको अपने जीवन में उतार भी पाएंगे।
इसको एलैबोरेट कर।
छोटी छोटी आदतें, सुबह टाइम से उठना, सफाई रखना, मंत्रों का उच्चारण करना, स्वाध्याय करना, श्रवण करना इत्यादि।
हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया पांच चीजें फिक्स हैं और जो रिस्पांस है वो चेंज कर सकते हैं, और जो लेकिन ऐसे देखते हैं जो रिस्पांस के हिसाब से ही फिर नई एक्टिविटी फिर स्टार्ट होगी। जैसे कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो उसके डिफरेंट रिस्पांस और सीक्वेंस और रिस्पांस के हिसाब से उसकी नेक्स्ट स्टेज डिसाइड होगी। फिर उसमें मतलब ये चीज़ें चेंज भी हो सकती है। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, उसका रिस्पांस अगर ख़राब है तो आई मीन उसने बिजनेस आगे बढ़ाने का डिसीजन ले सकता है या बिजनेस को बंद करने का, उसके रिस्पांस के ऊपर है। और उसने रिस्पांस उधार लिया, मतलब अपडेट कर लिया आपने, तो उसका ये जो एक्टिव धन भी चेंज हो जाएगा, धन का जो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ और ये पाँचों चीज़ें चेंज हो सकती है क्या उसके रिस्पांस के हिसाब से?
नहीं, वो फिक्स रहेगा, जो पांच चीज़ें वो फिक्स रहेंगी रहेंगे। और कई बार जो हमारी डेस्टिनी होती है वो हमारे रिस्पांस को भी प्रभावित करती है, क्योंकि वैसे के वैसे तमोगुण रजोगुण का प्रभाव रहेगा। हम इतने बंधे हुए हैं कि वैसे ही रिस्पांस करेंगे तो इसे फंस जाते हैं। इसलिए बड़ा मुश्किल है इनसे बाहर निकलना। इसलिए ये भक्ति की महिमा है, भक्ति से कर्माण निर्धारती किंतु च भक्ति भाजम। केवल भक्ति ही है जो हमारे कर्मों को काट सकती है। और कोई भक्ति को गंभीरता से कर रहा है वही सही ढंग से रिस्पॉन्स कर सकता है, अन्यथा तो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से ही सब चलता रहेगा। तो लिटरली कोई फ्रीडम नहीं है।
हरे कृष्ण जी, जैसे आपने बताया कि जैसे हम स्टार्टिंग जैसे भक्ति में हम स्टार्ट करते हैं तो हम अपने बिजनेस जो भी हमारी भौतिक जिम्मेवारियां हैं उसको हम यानी कि थोड़ा सा लाइटली लेने लग जाते हैं। सपोज बिजनेस कर रहे हैं हम, तो कैसे हम अपने आप को चेक करें कि ये लेजीनेस है या फिर सेटिस्फेक्शन है? लाइक जैसे हम कहीं भक्तों को देखते हैं कि वो अपना अच्छा खासा बिजनेस को छोड़ के थोड़ा सा जो अपनी लाइफ है सपोज धामवास कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो वो क्या अपनी जिम्मेवारी से भाग के गए या कैसे यानी कि वो कर सकते हैं?
सब कुछ हायर अथॉरिटीज़ के निर्देशन में होना चाहिए। हर केस इंडिविजुअल है ना, अपने मन से नहीं। तो किसी को क्या सूट करेगा, किसी को क्या सूट करेगा, उसके हिसाब से होना चाहिए। और लेजीनेस का मतलब ये है कि हम अपने जिम्मेवारियों को सही ढंग से नहीं निभा रहे। अगर किसी ने ये सोचा है, किसी की उम्र स्थिति पर आ गई है, पारिवारिक स्थिति ऐसी अवस्था में है कि वो पूरा टाइम ज़्यादा सेवा में लगा सकता है, तो निश्चित रूप से उसको उत्साहित करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए निर्णय किया जाए।
थैंक यू।
थैंक यू ब्रूजी। जैसे ब्रूजी आपने बताया कि पांच चीज़ें फिक्स होती हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या यह भी फिक्स होता है कि, क्योंकि लोग पूछते हैं कि हम साधना भक्ति में आएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे या गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, ये सब फिक्स होता है?
नहीं, ये फिक्स होता है आध्यात्मिक सुकृतियों के अनुसार, भाग्य के अनुसार नहीं, है ना। तो हमारे कई जन्मों की जैसे कई प्रकार की सुकृति होती है, भक्ति ठाकुर बताते हैं, भोग उन्मुख सुकृति, मोक्ष उन्मुख सुकृति, भक्ति उन्मुख सुकृति। तो कई जन्मों की भक्ति उन्मुख सुकृति क्रेडिट पॉइंट्स हमारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तब हमारे भक्तों के संग में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो भक्ति उन्मुख सुकृति से ही हमें भक्ति मिलेगी। भोग उन्मुख सुकृति से पिछले जन्म में हमने कुएं खुदवाए, कंबल बांटे, कपड़े बांटे, उससे भक्ति प्राप्त नहीं होगी। समझ रहे? भक्तों की सेवा की, मंदिर में आके प्रसाद पा लिया, है ना, गलती से हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, किसी भक्ति सेवा कर दी, तो ये सुकृतियों के प्रभाव से हम भक्तों के संग में आएंगे। सो भक्ति ही भक्ति का कारण है और कोई भक्ति का कारण नहीं है, ठीक है ना। भक्ति को कर्म फल के अंडर नहीं ला सकते, बाकी भक्ति कर्म फलों को काटती है, इससे ऊपर।
मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे किसी ने जो जो जैसे आपने बताया था कि संचित कर्म और भाग्य का अर्थ यह है कि जो उन संचित कर्मों का अभी एक्टिव रिएक्शन मिल रहा है इस जीवन में वो भाग्य है, तो ऐसे ही हम संचित भक्ति उन्मुख की सुकृतियां भी होती होंगी हर जीव की, तो उनका जब एक्टिव रिएक्शन फलीभूत होगा तो फिर उसको मिलेगा,
वो भक्ति में परिणित हो जाता।
परिस्थितियाँ काफ़ी एक्सट्रीम हो जाएं तो और वो अल्टीमेटली हमारी भक्ति को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो मेरे दो क्वेश्चन है कि उस स्थिति में भक्ति करना क्या है, मतलब भक्ति क्या है, कितनी भक्ति होनी चाहिए, और दूसरा है कि फिर हम उस परिस्थिति को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दोबारा भक्ति में थोड़ा आराम कर सके।
देखिए ये इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये हर व्यक्ति की नेचर को देखते हुए, उसकी परिस्थितियों को देखते हुए इसका जवाब दिया जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि परिस्थितियों को चेंज करने में ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी चाहिए, वो सर पे हमें दीवार पे सर मारने वाली बात है ना, और अपना क्या रिस्पांस देना उसमें दिखाना चाहिए, वो एक ये सिद्धांत है। अब कई बार देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति के घर की व्यवसाय की परिस्थितियां ऐसी हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए, मंदिर आना भी, भक्तों का संग करना भी, तो फिर थोड़ी सी परिस्थितियों में बदलाव लाने का प्रयास किया जाए जो आसानी से बदलाव आ जाए, ताकि वो भक्ति की जो मूल क्रियाएं हैं उससे वो वंचित ना रहे, वो तो करता रहे, है ना। ये कुछ सिद्धांत है, ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों में अप्लाई होगा।
मतलब दुखी होते हैं तो हम बिल्कुल ही मतलब बैठ जाते हैं अकेले कोने में जाके, तो हमें सुख और दुख में समान इक्वल कैसे समझना चाहिए कि हमारे कर्म के अनुसार मतलब जो मिलना है वो मिलना ही है, या इसके हम इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, मतलब समान कैसे रह सकते हैं?
सुख आता तो क्या करते हैं,
मतलब सुख और दुख में इक्वली रहना, रिएक्ट करना, जैसे आपने बताया कि मतलब ये हमारी वहाँ पे धाम जाने के लिए मतलब है, मतलब फर्स्ट क्वालिफिकेशन कि सुख और दुख में इक्वल रहना, तो ये इक्वली कैसे रह जाए,
इक्वली कैसे रह सकते हैं सुख दुख में? प्रैक्टिस, जितना सुनेंगे, जितना मनन करेंगे, प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, अपने व्यवहार को हम ऑब्जर्व करें, छोटे छोटे सुख दुख में ही, जैसे हम एग्जांपल दिया प्रसाद मानने वाले में, उसी में हम मालूम चलेगा रहे अभी कितना हम छोटे से सुख दुख में कितना रिएक्ट करते हैं, तो अपने आप को ऑब्जर्व करके इस पर कार्य करके प्रैक्टिस से ही होगा, और भगवान की कृपा से प्रयास करते रहें, जितना हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, ध्यानपूर्वक श्रवण करके मनन करेंगे, तो वो आध्यात्मिक बल मिलता है। अच्छी साधना से क्या होता है कि हमें आध्यात्मिक बल मिलता है, और उस आध्यात्मिक बल के आधार पर जो प्रलोभन आ रहे होते हैं उसको हम रिजिस्ट कर सकते हैं और उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक बल नहीं है तो जो प्रलोभन आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, उसमें हम बह जाएंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी जो हमारी तबीयत खराब होती है या फिर कुछ ऐसे फोर्सफुल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उनको कितना रिटेलिएट करना चाहिए और कितना हमारे को भक्ति में, जैसे योगासन है उसको करना, योगासन है, योगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना तो करना चाहिए कि इसको, या फिर कुछ कुछ सॉल्यूशन मिलता है कभी कभार, लेकिन क्लियर कट
सिद्धांत हमारा स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए हमें ठीक करने के लिए कितना प्रयास करना चाहिए, टू बी स्पेसिफिक, या फिर छोड़ दें मेरे कर्मों का फल है, ये कहने का है? तो निश्चित रूप से हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, है ना, क्योंकि स्वास्थ्य होगा गाड़ी है तभी हम साधना सही कर पाएंगे, इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, जो औषधि लेनी है औषधि लें, जो एक्सरसाइज करनी है करें, ताकि हम अच्छे ढंग से भक्ति कर सकें, तो लेकिन इसके साथ साथ फिर ये भी समझ लें कि एक लेवल तक ही स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, ये समझना, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है ना। अपने मंदिर, अपने कमरे में हमने बड़े बड़े पहलवानों की फोटो लगाई हुई है, मैं हूँ 45 किलो का, बनना चाहता हूँ 85 किलो का, तो वो मुश्किल है, तो इतना ही समझे मैं फेदर वेट रहूँगा, वो हैवी वेट रहेंगे, नहीं मुझे हैवी वेट ही बनना है, तो वो इस जन्म में संभव नहीं है। तो कई बार हमारी अपनी तरफ से बड़ी अनएक्सपेक्टेड वो होती है कि मैं भी ऐसे बन जाऊँ, मेरा भी ऐसे ब्रॉड वेस्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो जो है जो सही स्वास्थ्य रहना चाहिए उतना हम स्वीकार कर लें, और फिर देख लें कौन सी चीज़ हमें सूट करती हैं, कौन सी चीज़ सूट नहीं करती, उसके अनुसार अपना खान पान जीवन शैली रखें तो काम चल जाता है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन दिक्कत होती है, लेकिन स्वास्थ्य को रखना जरूर हमारा कर्तव्य है,
और वो भी भक्ति के लिए,
वो भी भक्ति के लिए, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अपने शरीर मन और बुद्धि को इतना स्वस्थ रखो ताकि सो दैट वन कैन डिस्टिंग्विश द गोल ऑफ लाइफ इन अ लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो कुछ भी आसपास सब उल्टा सीधा लगता है और हम अपने जीवन के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए शरीर को मन को स्वस्थ रखें। यस बोल।
जिम्मेदारियों
में भी फंस जाते हैं। जिम्मेदारी जो शब्द है तो जिम्मेदारी की आड़ में कई बार हम गैर जिम्मेवार जिम्मेवारी क्या है, कई बार हम मनोकल्पित जिम्मेवारी के चक्कर में ही फंस जाते हैं। तो मनोकल्पित जिम्मेवारी नहीं, जो हमें जिम्मेवारी प्राप्त हुई है वो जिम्मेवारी, जो हमारा धर्म है, हम किस आश्रम में है, स्त्री है पुरुष है गृहस्थ आश्रम में है ब्रह्मचारी आश्रम में है, उसके धर्म है उसके अनुसार हमें अपने वो हमारी जिम्मेवारियां हैं उसको निभाना है हमने। उसके अलावा जो हमारी सेवा की जिम्मेवारी मिली वो हमें मिली, उसके अलावा जो हमारे व्यवसाय की घर की जिम्मेवारी वो है, तो वो सब करनी है। मनोकल्पित नहीं हो, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लैरिफाई करें, समझ रहे बात को।
प्रभु जी बताया गया है हमारे संचित कर्मों का जो भाग हमें इस जीवन में मिलता है वही भाग्य है, और युद्ध की स्थिति देखकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से रिक्वेस्ट की कि वह युद्ध को रोका जाए, लेकिन धृतराष्ट्र जी ने रिस्पांस नहीं दिया। यदि धृतराष्ट्र जी रिस्पांस देते तो उस स्थिति में प्रारब्ध कट सकते थे या उनकी स्थिति बदल सकती थी?
बिल्कुल बदल सकते थे। उन्होंने बोला जब युधिष्ठिर को राजा बनाया जा रहा था तब आपने यही बोला ये भाग्य है, और अब दुर्योधन उल्टे सीधे षड्यंत्र रच रहे तो बोले अब भाग्य है। तो भाग्य का सहारा लेके धृतराष्ट्र अपनी निष्क्रियता को जस्टिफाई कर रहा था। तो इसलिए कई बार हम भी अपने निष्क्रियता को जस्टिफाई करते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं बताया गया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, किस गीता में बताया कहीं बता दो। द्रौपदी का चीरहरण हुआ सबने बोला जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं गलत है। सीता मैया का अपहरण हुआ किसी ने बोला जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं। लेकिन जो हो रहा है उसको अच्छे के लिए किया जा सकता है हमारे रिस्पॉन्स से, जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा लेकिन उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा सकता है, हम किस प्रकार से उसमें रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम मदिरा पान करके गाड़ी चलाएं एक्सीडेंट मार दें बोले तो भाग्य जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, गलत। तो हम गैर जिम्मेवार नहीं हो सकते। शॉर्टकट बताना चाह रहे पूछना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल दिया था पांच बड़ी व्यक्ति आई इसमें फेल हो गया तो कहाँ मालूम चलेगा मेरी कहाँ तक लिमिट है, 5 साल तक अप्लाई करूँ 10 साल तक करूँ फिर मालूम चले भाग गए है, कैसे मालूम चलेगा। सही बात है, किसी और में भी जा सकते। तो देखिए एक चीज होती है जो हम करना चाहते हैं और उसको करने का प्रयास भी करते हैं और इधर से करते भी हैं फिर भी हमें जो परिणाम चाहिए नहीं मिल रहा हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी, तो समझ चाहिए कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये कुछ पूर्व जन्म कर्मों के फल, उसको मान लेना चाहिए। अन्यथा जो हम करना चाहते हैं उसको करें और पूरे हृदय से करने का प्रयास करें, अगर वो हमारे कर्मों फलों के अनुसार हुआ प्राप्त के अनुसार तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भगवान की इच्छा मान के उसको पीछे हो जाइए, उसको रिजिस्ट नहीं करना, क्यों नहीं तो क्यों नहीं, उसका नहीं तो मेरे साथ क्यों नहीं, ऐसे आगे बढ़ेंगे। आप जितना आध्यात्मिकता में हम उन्नत होंगे उतना हमें गुरु और कृष्ण के पास ये बुद्धि प्राप्त होगी, इसका कोई टेलर मेड आंसर नहीं है, ये प्रेरणा प्राप्त होती है अंदर से और गुरु के निर्देश प्राप्त होते हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है,
हरे कृष्णा। एक
क्वेश्चन था मेरा, जो आपने कहा है एग्जीक्यूट करने के लिए पांच चीजें चाहिए होती हैं, तो लास्ट जो था वो कि लॉर्ड्स विल, तो लॉर्ड्स विल मतलब टेररिज्म के एक्ट में हम लॉर्ड्स विल को कैसे मतलब कर सकते हैं कि टेररिस्ट कोई चीज कर रहा है तो उसमें लॉर्ड्स की विल मतलब भगवान की इच्छा भी है उसमें, और या फिर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसमें भगवान की इच्छा है, तो मतलब भगवान क्यों सैंक्शन करते हैं उन चीजों को फिर?
भगवान सैंक्शन करते हैं, इसके पीछे कर्मों की गति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, किस जीव को किस जन्म के कर्म का फल कैसे देना है, किसको माध्यम बनाना है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
तो ये तो एक तरीके से एक्ट ऑफ टेररिज्म को जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब टेररिस्ट जो कर रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है एक्ट्स ऑफ टेररिज्म को जस्टिफाई किया जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, किसी की फ्री विल है, कोई ऐसा करना चाहता है, और भगवान देखते हैं कई बारी संचित कर्म, प्रत्येक जीवों के संचित कर्म को भी संचित किया जाता है, क्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड कर्म को देखा जाता है, और फिर भगवान इकट्ठा करके सबको एक साथ कर देते हैं। इतने नेचुरल कैटास्ट्रोफीज होती हैं।
नहीं, नेचुरल कैलामिटीज तो एक बार जस्टिफाइड है कि मतलब वो कॉज ऑफ नेचर है, बट टेररिज्म कोई किसी को मार दे और फिर कह दे कि भगवान ने कहा था, मतलब भगवान
ने कहा था, भगवान ने कहा, पहले चार भी तो उसने कार्य किए।
हाँ, पहले वो चीज है,
फिर वो भी तो है।
हाँ।
और फिर उसका बाद भगवान उसको रिएक्शन भी देते हैं। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो है, जैसे कि जब अमेरिका वियतनाम का वार चल रहा था, अमेरिका इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है और वियतनाम छोटा सा देश है, लेकिन वियतनाम अमेरिका को हरा रहा था। सुप्रभा से पूछा गया क्या कारण है, सुप्रभा ने उत्तर दिया अमेरिका में स्टॉप काउ स्लॉटर,
ऑन स्लॉटर,
काउ स्लॉटर,
अच्छा काउ स्लॉटर,
गायों की हत्या बंद करो, आप गौ हत्या करते हो इसलिए आप भी ऐसे कटे जा रहे हो।
अमेरिका तो हमेशा से इंटरवीन करता है, मतलब वियतनाम में तो उसने बहुत ज्यादा मतलब, हाँ,
जो भी मैं कह रहा हूँ ये हमें तो बाहरी दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो असली कारण देख पा रहे हैं। तो इसलिए क्या किसका कारण है ये हम पॉइंट आउट, कोई पैकेज नहीं है कि ऐसा हुआ ये कारण निकला, इट्स नॉट सो इजी बिकॉज वी डोंट नो अवर पास्ट लाइफ, कृष्णा नोज एवरीथिंग, तो किसके अनुसार वो करते हैं।
हम हमारे पर्सपेक्टिव से हमें चीज समझ में आ गई, हम एक अदर साइड ऑफ मतलब पिक्चर देख रहे हैं कि हम मतलब चीजों को समझ रहे हैं कि भगवान की इच्छा थी तो ऐसा हो गया, बट जो अवेयर नहीं है, जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से नहीं जुड़े हैं, तो उनको तो लगेगा कि बहुत अनजस्टिफाइड है टेररिज्म, मतलब खत्म करना चाहिए, टेररिस्ट को मारना चाहिए।
हाँ, वो हमारा रिस्पॉन्स यही है, हम ये नहीं बोलेंगे कि टेररिस्ट को हम बढ़ावा बढ़ाएं, टेररिस्ट को तो खत्म करना ही चाहिए, शांति का संदेश देना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा कि देवम चैवात्र पंचमम, भगवान की इच्छा से टेररिस्ट का अटैक हुआ, उसके उस आतंकवाद की हम निंदा करेंगे ही करेंगे, यानी कि पाप कार्य करने के लिए भी भगवान का सैंक्शन चाहिए, इसका मतलब यानी कि पाप कार्य की अनुमति दी जा रही है। सरकार लिख रही है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोगों को स्वतंत्रता दे रही है, अब सिगरेट पीजिए, तो बोले सरकार लिख भी रही है फिर दे भी रही है, तो सरकार इंडिपेंडेंस दे रही है सबको, लेकिन सैंक्शन सरकार ही कर रही है।
बट सिगरेट स्मोकिंग वाला केस है कि मतलब आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, आप दूसरे की प्राइवेसी या
दूसरे, की दूसरे को हार्म कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, बिना बैठे बिना सिगरेट पिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ।
फिर बट एट लार्ज आप अपने आप पी रहे हो, सिगरेट स्मोक कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम अपने आप को हार्म कर रहे हो,
दूसरों को भी हार्म कर रहे हो, वातावरण को प्रदूषित।
नहीं, वो तो बहुत मिनिमल स्केल में होता, बट
नो नो इट्स एवरीथिंग, दिस इज एग्जांपल के लास्ट अगर किसी कोई व्यक्ति मेरा बच्चा इंस्ट्रूमेंट बनता है मुझे दुख देने के लिए, मेरे कर्म का फल का वो मैसेंजर है,
जो मिलना था
पोस्टमैन है, तो उस पोस्टमैन को भी कोई रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि मुझे दुख देने के लिए? कि जैसे हमने कहा जो डेस्टिनी है वो इनवर्ड्स है, मुझे ये नहीं बनना कि मैं तो कर्म फल बांट रहा हूँ सबके, यहाँ दुख दिया उसको वहाँ दुख दिया, मैं तो कर्म फल बांट रहा हूँ, मुझे तो ये देखना कि मैं किसी के जीवन में दुख का कारण ना बनूं। और अगर मैं किसी के जीवन में दुख का कारण बन रहा हूँ या मुझे फोर्स किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मैं भी एक एजेंट बन रहा हूँ, उसका रिएक्शन मुझे भी मिलेगा।
जी एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से तो एकदम क्लियर है कि क्या करना चाहिए, लेकिन टेक्निकली समझने के लिए क्योंकि ये क्वेश्चंस फेस करने पड़ते
हैं। हाँ होगा।
तो मान लीजिए अगर कोई मुझे डिलीवर कर रहा है जो मुझे मिलना ही था, उसको भी रिएक्शन मिलेगा,
तो नया एक्शन जनरेट कर रहा है।
फिर इसमें एक क्वेश्चन उठता है प्रभु जी कि ये कर्म की ये जो साइकिल बनाई गई है ये तो इंटेंशनली फास्ट मतलब फंसवाने के लिए बनाई गई है, प्योरिफिकेशन के लिए नहीं है।
प्योरिफिकेशन के लिए है। जो एक बार ये समझ जाए कि नहीं ये सब कुछ बेकार है, भगवान की शरण लेनी है, एक हरे कृष्ण महामंत्र लेते ही सारे कर्म फल कट जाए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। कर्मों की साइकिल इतनी जटिल है, इतनी जटिल है, इससे हम अपने दिमाग से अपनी कल्पना से बाहर निकल नहीं सकते, असंभव। जैसे ही भगवान की शरण लेते हैं, भगवान का एक शुद्ध नाम ले लिया, सारे कर्म फल कट जाएंगे, है ना। एक बार हमने उत्साह से गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, सारे पुण्य और पाप खत्म हो जाएंगे। इतनी शक्ति है भक्ति में, उसकी महत्वता को हमने समझना है, अन्यथा ये कर्म फल से इम्पॉसिबल है निकलना बाहर, एक के बाद एक रिएक्शन ही रिएक्शन। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ राशि में भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के यथा गौप्य वंदन।